सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं केवलनाणुजोय्य छद्दौवमणिज्यं पवाईः नमिऊणजिणं भणिमो दौवणियोगं गणियसारम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित दौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर रची गई थी, जिसके कर्ता है भगवान पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, और जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यह रचना की थी। और यह उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यहाँ अभी हम पृष्ठ संख्या 4 पर आए हुए, तीसरी पुस्तक प्रारंभ हुई है हमारी, चार नंबर 4। कल हमने देखा था कि द्रव्य किसे कहना है, तो जो पर्याय उनको प्राप्त होता है, होता आया था और होता रहेगा अनंत काल तक, यानी अनादि अनंत काल तक जो पर्यायों को प्राप्त होता रहता है उसको द्रव्य कहते हैं। ये बात हमने कल देखी थी। द्रव्यों में हमने दो भेद देखे थे, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। और जीव द्रव्य का लक्षण बताया था कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित है, असंख्यात प्रदेशी है, अमूर्तिक है, परंतु इतना कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो साधारण लक्षण है, यानी सामान्य गुण है जो धर्म अधर्म आकाश काल में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वे भी अमूर्तिक है, उनमें भी धर्म और अधर्म असंख्यात प्रदेशी है, वे भी स्पर्श रस गंध से रहित है। तो इस तरह से हमने देखा था कि जीव का विशिष्ट लक्षण कौन सा बताना पड़ेगा, तो कहते हैं कि वहाँ उसके तीन बातें बताई थी, तीन देखी थी। तो तीन कौन सी हैं? तो ऊर्ध्वगति स्वभाव, दूसरा कौन सा देखा था? भोक्तृत्व और स्वपर प्रकाशकत्व। ये हमने उसके लक्षण देखे थे, हर एक द्रव्य के हमने लक्षण देखे। पुद्गल के लक्षण हमने स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं वो भी देखा था, और उसमें हमने 6 प्रकार के स्कंध देखे थे, उसके उदाहरण के तौर पर रिप्रेजेंटेटिव करके उसका एक एक नाम भी बताया था, पृथ्वी, जल, छाया, फिर चक्षु इंद्रिय को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों के विषय ऐसे जो पदार्थ है वे, 5वें स्थान पर कर्म स्कंध और 6ठे स्थान पर परमाणु, ये 6 प्रकार के स्कंध देखे थे। दूसरी भाषा में उन्हीं को समझाना है तो स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल। तो ये तो पुद्गल की बात हुई। फिर धर्म अधर्म आकाश के भी उन्होंने गुण बताए कि वे भी धर्म अधर्म आकाश काल, ये जो 4 है वो कैसे है, अरूपी है और अजीव है, यानी उसमें भी स्पर्शादि गुण नहीं है। तो उनका एक एक गुण उन्होंने बता दिया, धर्म का है गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगाहन हेतुत्व और काल का परिणमन हेतुत्व। काल द्रव्य में एक बात खास बताई उन्होंने कि स्व और पर को परिणमन में निमित्त है, ये बात हमने कल विस्तार से देखी थी। इस प्रकार ये जो 6 द्रव्य है, तो ये हमारा जो द्रव्य प्रमाणानुगम कहो या संख्या प्ररूपणा कहो, तीसरी पुस्तक जो है, तो इसमें कौन से द्रव्यों की संख्या की बात चलेगी, ऐसा प्रश्न है। हम ये शंका से फिर लेते हैं 4th पृष्ठ। इन 6 द्रव्यों में से यहाँ प्रकृत में यानी सांप्रत में, अभी वर्तमान में, हाल में किस द्रव्य से प्रयोजन है, यानी कौन से द्रव्यों की यहाँ बात होगी, अर्थात किस द्रव्य के द्वारा प्रकृत विषय कहा जाएगा। अपना विषय कौन सा है? संख्या प्ररूपणा। तो संख्या कि जो बातें बताने जाने वाले हैं वो कौन से द्रव्य के बारे में बताएंगे, उसका समाधान करते हैं। सत प्ररूपणा अनुयोग द्वार में, ये सत प्ररूपणा अनुयोग द्वार हमने कहाँ देखा था? पहले दोनों पुस्तक सत प्ररूपणा थी, सत यानी अस्थि, जीवों की सत्ता बतलाई थी। वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मार्गणाओं में और गुणस्थानों में पाए जाते हैं, तो उसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो सत प्ररूपणा योग अनुयोग द्वार में 14 मार्गणा स्थानों के द्वारा जिस जीव द्रव्य के 14 जीव समासों के अस्तित्व का निरूपण कराए हैं, मार्गणाओं के द्वारा गुणस्थानों का अस्तित्व, यहाँ लिखा तो है 14 जीव समास, परंतु जीव समास के दो अर्थ होते हैं। एक तो 14 जीव समास में हम एक इंद्रिय के सूक्ष्म वादा द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय के संगी असंगी, इन सबके पर्याप्त अपर्याप्त, वो भी 14 जीव समास कहते हैं। और गुणस्थानों को भी हमने देखा है, पहले ही पुस्तक में पहले ही सूत्र से उन्होंने शुरुआत की थी, वो तो ये 14 जीव समास है ऐसा, यानी वो गुणस्थान है, गुणस्थान के लिए भी जीव समास ऐसा शब्द आता है। तो उनके अस्तित्व का निरूपण कराए हैं प्रकृत में उसी जीव द्रव्य से प्रयोजन है, यानी सत प्ररूपणा में जिसका वर्णन था, गुणस्थानों और मार्गणा स्थानों के जो हमने विस्तार से चर्चा की है, उसी जीव द्रव्य के बारे में यहाँ संख्या प्ररूपणा चलेगी। शंकाकार पूछता है, आपने कैसे जाना कि उसी जीव द्रव्य की बात हो जाएगी? तो समाधान, मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं, इस प्रकार शेष 5 द्रव्यों के परिमाण को छोड़कर, परिमाण यानी प्रमाण, एक जीव द्रव्य के परिमाण के निरूपण करने वाले सूत्र से यह जाना जाता है कि प्रकृत में एक जीव द्रव्य से ही प्रयोजन है, अन्य द्रव्यों से नहीं। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ सूत्र कौन सा कहेंगे अभी कि वो मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है? पहले में पहला सूत्र बताया था कि यहाँ द्रव्य प्रमाणानुयोग में ओघ से और आदेश से वो सब निर्देश किया जाएगा, इन्हें कथन किया जाएगा, और उसके बाद ही अब आगे चलकर वो गाथा बताए सूत्र कहेंगे कि मिथ्या दृष्टि जीव इतने होते हैं। दूसरे सूत्र से ही बात करने वाले हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं, तो अनंत है। तो अन्य द्रव्यों की बात छोड़ दी, पुद्गल कितने, धर्म अधर्म कितने, आकाश कितने, वो बात सब छोड़ दी और डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं उसकी बात शुरू की है। तो उससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ जीव की ही बात चलेगी। यहाँ क्या लिखा है देखो, इस सूत्र से जाना जाता है कि प्रकृत में एक जीव द्रव्य से ही प्रयोजन है। एक जीव द्रव्य ने अनंत जीव में से एक जीव द्रव्य की बात नहीं चल रही है, यानी एकमात्र जीव द्रव्य से ही प्रयोजन है, ऐसा ख्याल है ना? क्योंकि एक शब्द कहाँ लगाते तो उसका अर्थ फिर चेंज हो जाएगा। अनंत जीवों में से एक जीव द्रव्य की बात नहीं है, एकमात्र जीव द्रव्य की बात चल रही है, ऐसे हम कहते ना, एक इसकी बात चल रही है ऐसे। तो एक जीव द्रव्य की ही बात चल रही है, अन्य द्रव्यों की नहीं। अब प्रमाण किसको कहना, यहाँ द्रव्य प्रमाण ऐसा शब्द है ना, द्रव्य प्रमाणानुगम, अभी उसका अर्थ समझाएंगे। द्रव्य का अर्थ क्या है, प्रमाण का अर्थ क्या है, अनुगम का अर्थ क्या है, उसकी बात चलेगी। तो कहते हैं जिसके द्वारा पदार्थ मापे जाते हैं या जाने जाते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। हम कहते ना, अभी हमें कुछ चीज बनानी है, हम कहते इसमें प्रमाण कितना लेना, शक्कर का प्रमाण कितना है, आटे का प्रमाण कितना है, घी का प्रमाण कितना है, वो प्रमाण जो है ना जिसके द्वारा चीजें मापी जाती है। अभी कोई प्रवाही है तो हम मापेंगे, किसमें मापेंगे, लीटर में मापेंगे, हा? और कोई कपड़ा नापना है तो मीटर में नापेंगे। तो ये मापे जाते हैं पदार्थ, तो क्या कहते हैं, या जो कोई बहुत सारी चीजें लाई तो हम कहेंगे ये कितने आम कितने लाए, तो कितने डजन लाएंगे, वहां संख्या कहेंगे, तो वो सब प्रमाण में आता है। तो कहते कि जिसके द्वारा पदार्थ मापे जाते हैं या जाने जाते हैं उसे प्रमाण कहते हैं, और द्रव्य के प्रमाण को द्रव्य प्रमाण कहते हैं। द्रव्य कितने हैं उसका प्रमाण बताया, या द्रव्य कितना बड़ा है उसको भी हम प्रमाण कहेंगे, है ना, उसका क्षेत्र बताएंगे, या यहाँ तो हम संख्या की बात करेंगे खास करके। तो तो द्रव्यों का प्रमाण कितना है, तो उसको कहेंगे द्रव्य प्रमाण। शब्द तैयार हुआ ना, हम कहते हैं फूल कमल की गंध, कमल गंध ऐसा कहेंगे। तो ये वहाँ बीच में जो प्रत्यय लगाया है के वाला, वो निकाल देते हैं और फिर द्रव्य प्रमाण ऐसा डायरेक्ट कह देते हैं। देखो क्या कहा, द्रव्य के प्रमाण को द्रव्य प्रमाण कहते हैं। शंका, इस प्रकार द्रव्य प्रमाण इन दोनों पदों में दो शब्द हुए ना, उसको एक शब्द और दूसरा शब्द उसको पद कहते हैं। इन दोनों पदों में तत्पुरुष समास करने पर द्रव्य से प्रमाण का भेद प्राप्त होता है, जैसे देवदत्त का कंबल। दो भिन्न पदार्थों में द्रव्य का प्रमाण है ना, द्रव्य की संख्या यानी दो भिन्न पद है, तो जैसे देवदत्त का कंबल कहने पर देवदत्त भिन्न है और कंबल भिन्न है। कहते ना मेरी साड़ी या ये मेरा पेन है, तो मैं भिन्न हूँ पेन भिन्न है, तो ऐसे आप द्रव्य का प्रमाण कहने पर द्रव्य भिन्न हो जाएगा और उसका प्रमाण भिन्न हो जाएगा, ऐसी शंकाकार की शंका है। उसका समाधान करते हैं। देवदत्त से कंबल का जिस प्रकार भेद है, प्रकृत में उस प्रकार का भेद नहीं है। शंकाकार ने जो दृष्टांत बताया है देवदत्त का कंबल, तो उसमें दो भिन्न चीजों में वो का लगाते हैं, है ना, परंतु वैसा भेद यहाँ नहीं है। द्रव्य का प्रमाण में वो जैसे कंबल और देवदत्त पूर्णता भिन्न चीजें हैं, वैसे भिन्नता यहाँ नहीं पाई जाती है। अभेद के रहने पर भी यानी अभेद वस्तु में भी ऐसा कहेंगे हम, कैसा कहेंगे, जैसे चांदी की थाली, ये मंजूबेन की थाली है कहेंगे हम, ये थाली पर नाम डालते ना, वहाँ लिखेंगे या एम बी शाह नहीं क्या, दोषी दोषी, अच्छा दोषी, तो क्या कहते हैं हम कि ये हमसे भिन्न है, फिर भी उसको हम कहें ना ये मेरी चीज है। परंतु चांदी की थाली कहेंगे तो चांदी और वो थाली अभेद है, तो उसमें भी की लगाते हैं। वैसे यानी इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जरूरी नहीं कि दो भिन्न चीजों में ही वो ये के वाला प्रत्यय लगेगा, उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। यानी इसकी ये चीज है, ऐसे दो भिन्न वस्तुओं को हम यहाँ जैसे द्रव्य प्रमाण एक शब्द कर दिया, दो शब्दों को एक कर देना और बीच वाला वो जो प्रत्यय है वो निकाल देना, उसको कहते हैं समास। एक जोड़ हमने लिख दिया ना वहां, तो उसको यहाँ कहते हैं कि इसका जरूरी नहीं है कि दो भिन्न चीजों में ही ये तत्पुरुष समास लगता है, अभेद में भी लगता है। जैसे अभी मैंने बोला ना ये चांदी की थाली या सुवर्ण का पात्र, हम क्या कहेंगे उसको, सुवर्ण पात्र, ऐसा हम शब्द भी अपने लौकिक में हम वापरते हैं ना शब्द, तो क्या कहते हैं कि अभेद रहने पर भी, अभेद के रहने पर भी उत्पल गंध इत्यादि पदों में तत्पुरुष समास देखा जाता है। ये जो दो उत्पल और गंध, ये दो शब्द भिन्न है, उसको दोनों में से वो के वाला हटाकर एक शब्द बना देना, उसको कहते हैं समास। और उसमें संबंध बताने वाला जो शब्द था बीच में के, उसको निकाल दिया, तो उसको कहेंगे तत्पुरुष समास। ये व्याकरण के विशिष्ट नाम है। तो क्या कहते हैं उत्पल गंध, उत्पल गंध का अर्थ वाला बताए, हाँ उपल, उत्पल यानी क्या मालूम नहीं, नाम सुना होगा उत्पल दत्त, हाँ खाली उतना ही सुना है। उत्पल यानी कमल, नील कमल को उत्पल कहते हैं, ब्लू लोटस का हो या वाटर लिली ऐसा भी उसमें आता है। नील कमल का भी नाम सुना है, कहाँ सुना है, हाँ 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 चिन्ह 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 है, किसी तीर्थंकर का है, हाँ कौन से तीर्थंकर का है, आहा नमिस नील कमल, ये तो मराठी में हम गाते थे ना हर एक तीर्थंकरों के चिन्ह, नमिनाथ तीर्थंकर का चिन्ह है वो नील कमल, तो उसको कहते उत्पल। उत्पल यानी कमल की गंध, तो उत्पल गंध है सर, हमने डायरेक्ट उसका शब्द बनाया, तो उसको कहते तत्पुरुष समास। तो उसमें कमल से उसकी गंध भिन्न नहीं है, तो अभेद चीज में भी ये तत्पुरुष समास बन सकता है, ये इतना उनको उदाहरण देके समझाना है। यहाँ कमल विमल से कुछ प्रयोजन नहीं है, व्याकरण समझाना है उनको। इसका यह तात्पर्य है कि उत्पल गंध इत्यादि पदों में, उत्पलस्य गंधः उत्पल गंध यानी उत्पल का गंध, यानी कमल का गंध, कमल का सुवास, तो उसको उत्पल गंध कहेंगे। इत्यादि रूप से तत्पुरुष समास के रहने पर भी जिस प्रकार उत्पल से गंध का भेद नहीं होता है, यानी कमल से उसका सुवास भिन्न नहीं है, तो हम उसको कमल सुवास ऐसा डायरेक्ट लिख देंगे, वो बीच वाला का निकाल देंगे, तो उसको कहते वो शब्द तैयार हो ना, एक समास हुआ, दो भिन्न पदों का एक पद बन गया, तो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। उसी प्रकार यहां पर भी द्रव्य से प्रमाण का सर्वथा भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि द्रव्यों की संख्या, यानी संख्या कोई अलग चीज है और द्रव्य कोई अलग चीज है, ऐसे नहीं है। द्रव्यों को ही हम गिनती करेंगे तो उसी को हम द्रव्य की संख्या कहेंगे, क्या लगता है? ये क्या बताना चाहते हैं? ऐसा ना, शंकाकार एक एक बात पर प्रश्न पूछता है, अभी तो व्याकरण के द्वारा वो बहस कर रहे हैं, इसलिए उसको यहां समझाते हैं। अथवा द्रव्य से प्रमाण,
देखिए यहां पर बात ये हो रही है कि द्रव्य प्रमाण जो कहा गया है, क्या वे दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है, इस पर शंका उठाई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो दोनों एक ही है, लेकिन उसमें भी एक बात बताई है उन्होंने कि द्रव्य से प्रमाण का सर्वथा भेद नहीं है, भेद है लेकिन सर्वथा भेद नहीं है। जैसे देवदत्त का कंबल, इनके सर्वथा भेद है, उस तरह से इन दोनों का सर्वथा भेद नहीं, भेद है लेकिन सर्वथा नहीं है, ये बात यहाँ विशेष रूप से समझाना चाहते हैं। शुरू शुरू में कुछ व्याकरण के पॉइंट्स आएंगे, अगर आप नहीं भी समझो तो रिलैक्स हो जाना।
तो कोई कहेगा कि सर्वथा भिन्न नहीं है तो सर्वथा अभेद है क्या दोनों? तो ऐसा भी नहीं है। जैसे हम कमल का गंध कहते हैं तो गंध उसका एक गुण हुआ, ख्याल है ना? तो जैसे द्रव्य और गुण सर्वथा भेद भी नहीं है और सर्वथा अभेद भी नहीं है, किसी अपेक्षा से उसमें भिन्नता भी है, बराबर, वैसे यहां लगाएंगे, किसी अपेक्षा से द्रव्य और प्रमाण में भिन्नता भी है। अभी यहां एक शब्द तैयार हुआ है, उसकी बात यहां चलेगी, ख्याल है? देखो, अथवा द्रव्य से प्रमाण किसी अपेक्षा से भिन्न ही है, अपेक्षा लगाएगी तो हम आगे ही भी लगा सकते हैं, किसी अपेक्षा, वो अपेक्षा बताएंगे अभी। यदि द्रव्य से प्रमाण का कथनचित भेद न माना जाए, यानी किसी अपेक्षा से वो उसमें भेद भी है ऐसा अगर नहीं मानेंगे, तो द्रव्य और प्रमाण में विशेष्य विशेषण भाव नहीं बन सकता। जिसका विशेषण है उसको कहेंगे विशेष्य, और विशेषण जैसे भी ये क्लिप है वो गुलाबी है, बराबर, ये वर्ण उसका बताया हमने, तो उसका वर्ण हमने बताया तो ये उसका विशेषण हुआ, ये गुलाबी है ये उस विशेषण हुआ, किसको बता रहे हैं? एक क्लिप को बता रहे हैं, तो ये विशेष्य है और गुलाबी उसका विशेषण है, यानी इतना तो डिफरेंस है ना, एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है, जिसका विशेषण होता है उसको कहते विशेष्य, तो इतना तो उसमें भेद है ही है? हम कहते ना कोई बच्चा गोरा है तो बच्चा विशेष्य हुआ, गोरा उसका विशेषण हुआ, राजा पराक्रमी है तो राजा विशेष्य हुआ, पराक्रमी उसका विशेषण हुआ, इस तरह से ये द्रव्य का प्रमाण ये यहाँ बता रहे हैं। द्रव्य और प्रमाण, द्रव्यों की संख्या बता रहे हैं ना, तो द्रव्य विशेष है, प्रमाण उसका विशेषण है। अथवा अभी एक बात बता दी उन्होंने यहाँ कि पूरा अभेद भी नहीं है, सर्वथा अभेद भी नहीं है और सर्वथा भेद भी नहीं है, परंतु किसी अपेक्षा से उसमें भिन्नता भी है और बिल्कुल ही भिन्न हो जाए ऐसी भी वस्तु स्थिति नहीं है। जैसे देवदत्त का कंबल दो भिन्न चीजें हैं, देवदत्त अलग है और कंबल अलग है, वैसी भिन्नता द्रव्य और प्रमाण में नहीं है। ये एक बात यहाँ समझा दी। अब दूसरी बात समझा रहे कि अलग पद्धति से इसको समझाएंगे, अथवा द्रव्य और प्रमाण इन दोनों पदों में द्रव्यमेव प्रमाणम द्रव्यप्रमाणम, अर्थात द्रव्य ही प्रमाण द्रव्य प्रमाण है, इस प्रकार कर्मधारय समास करना चाहिए। पहले तो बीच में के लगाया था, अभी द्रव्य ही प्रमाण है, तो इस तरह उसमें ये अलग, ये समास का अलग नाम है, कर्मधारय कहते हैं उसको, तो उसको कर्मधारय समास से भी द्रव्य प्रमाण ये शब्द बन सकता है, ऐसी बात बताई। यहाँ पर भी द्रव्य और प्रमाण इन दोनों में एकांत से एकत्व अर्थात अभेद नहीं है। एकांत से एकत्व यानी सर्वथा एकत्व नहीं है, सर्वथा अभेद नहीं है, क्योंकि सर्वथा एकार्थ में अर्थात अभेद में समास ही नहीं हो सकता। क्या कहना चाहते हैं? दो चीजें भिन्न होगी तभी हम उसमें संबंध जुड़ाएंगे, उसका समास बनाएंगे। कोई एक ही वस्तु है, अभी इसमें समास लगाओ, खाली हमने कह दिया फूल, तो उसमें क्या समास लगाएंगे? फूल की गंध कहो तो उसमें दो मिलकर एक हम समास बनाएंगे, परंतु एक ही कोई हम वस्तु बता देंगे तो उसमें क्या समास लगाएंगे? उसका विशेषण बताओ तो उसको समास के साथ उसके बात करेंगे। ऐसे यहाँ कहते हैं कि सर्वथा अभिन्न हो तो उसका समास ही बन नहीं सकता, इसलिए कथनचित उसमें भेद है। अथवा अभी और तीसरी पद्धति, तीसरा समास और एक बता रहे, द्रव्य और प्रमाण इन दोनों पदों में द्वंद्व समास करना चाहिए, वही इस प्रकार द्रव्य और प्रमाण द्रव्य प्रमाण। द्वंद्व यानी दो बातें, दो बातों के मिलाकर कहना और बीच का गायब कर दो और एक शब्द कह दे, जैसे हम कहते हैं लव कुश, लव और कुश दो है ना, हम एक साथ बता देंगे, अभी उदाहरण के तौर पर बता दिया हमने। तो वैसे दो भिन्न चीजें, ये द्रव्य प्रमाण, द्रव्य प्रमाण कह दिया, उसमें द्वंद्व समास भी हो सकेगा। समास यानी ये एक शब्द बने ना द्रव्य प्रमाण, ये पहले हमने तत्पुरुष समास देखा, फिर कर्मधारय समास देखा, और अभी द्वंद्व समास देखते हैं। ये व्याकरण की चीजें हैं, तो इस तरह से ये एक शब्द बन सकता है, ऐसे तीन अलग अलग पद्धति से उन्होंने समझाया। ये हम स्कूल में पढ़े थे सब व्याकरण, अभी तो याद भी नहीं इतना ज्यादा। अभी शंका द्वंद्व शंका याद है, शंका क्या है? द्वंद्व समास अवयव प्रधान होता है, अवयव प्रधान यानी उसके दो अवयव हो गए ना, दो भिन्न चीजों के इकट्ठा बताए हमने, इसलिए द्रव्य और प्रमाण का पृथक पृथक प्ररूपण प्राप्त हो जाता है। परंतु सूत्र में द्रव्य और प्रमाण का पृथक पृथक कथन नहीं किया है, द्रव्य प्रमाण का ही अभी बात चलेगी वहां, तो उनका द्रव्य का अलग कथन हो और प्रमाण का अलग कथन हो ऐसा तो नहीं किया है। यद्यपि अभी शंका ही चल रही, समुदाय प्रधान भी द्वंद्व समास हो सकता है, समुदाय ने समूह में भी द्वंद्व समास लगता है, तो भी अवयवों को छोड़कर समुदाय पाया नहीं जाता, इसलिए समुदाय प्रधान द्वंद्व समास के करने पर भी अवयवों की ही प्ररूपणा प्राप्त होती है, यानी जी दो भिन्न बातें हैं उनके समूह की वहां बात हो जाएगी, तो उनका अलग अलग प्ररूपणा अलग अलग कथन करना चाहिए था, द्रव्य का कथन अलग करना चाहिए था और प्रमाण का अलग करना चाहिए था, परंतु सूत्र में अवयवों की अथवा समूह की प्ररूपणा नहीं की गई है। सूत्र में तो क्या गया, कथा बताया गया कि द्रव्य प्रमाण अनुगम की अपेक्षा से ऐसी ऐसी, तो डायरेक्ट द्रव्य प्रमाण की ही बात की, द्रव्य की अलग और प्रमाण की अलग बात नहीं की है, ऐसा सूत्रकार ने, शंकाकार की ऐसी शंका है। इसलिए द्रव्य और प्रमाण इन दोनों पदों में द्वंद्व समास नहीं किया जा सकता है, ऐसी शंकाकार की शंका है, यानी कौन सा समास करना चाहिए उस पर ये बहस कर रहा है। समाधान, हमें तो ऐसा लगता है ये कोई प्रयोजनभूत चीजें नहीं है तो इसमें क्यों इतने उलझ रहे हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्य के प्रमाण के प्ररूपण कर देने पर द्रव्य का भी प्ररूपण हो ही जाता है। हमने संख्या बताई द्रव्यों की, जैसे मिथ्या दृष्टि इतने जीव है, अनंत जीव है, तो वहाँ प्रमाण का भी कथन किया और उसमें वो जीवों का भी कथन हो ही गया, ख्याल है ना। इसलिए कहते हैं कि उनका प्रमाण बताने पर द्रव्य की भी वहाँ प्ररूपणा हो गई, क्योंकि द्रव्य को छोड़कर उसका प्रमाण नहीं पाया जाता है। आप खाली संख्या की इतने हैं, अनंत है, अरे पण क्या अनंत है, तो हम कहेंगे ना जीव अनंत है कहो, या मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है कहो, या सिद्ध जीव अनंत कहो, ऐसा कहेंगे तो वहाँ जीवों का वहाँ वर्णन हो गया ना, द्रव्य का वर्णन हो गया। अकेले आप संख्या बताएंगे तो दूसरा प्रश्न पूछेंगे ये किसकी बात हो रही है, खाली अनंत कह देने से बात नहीं चलेगी, तो किसकी बात चल रही है। तो इसलिए कहते हैं कि द्रव्य अनंत है या मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है, ऐसा कहने पर वो द्रव्य का भी कथन हुआ और प्रमाण का भी हुआ। इसलिए ये जो शंकाकार ने शंका उठाई थी कि आप द्रव्य प्रमाण कहने पर दोनों की अलग अलग भिन्न बातें नहीं बता रहे हो, उसका खंडन कर दिया। कहा नहीं, समाधान हो गया ना अभी। त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों की परस्पर अपृथक वृत्ति द्रव्य है, क्या बात कहना चाहिए। जो हमने कल बता देखा था कि द्रव्य किसको कहना, जो पर्याय को प्राप्त होता आया है अनादि से, वर्तमान में है वो हो रहा है और भविष्य काल में वो होता रहेगा, उसको द्रव्य कहते हैं। यानी क्या सिद्ध हुआ, अनादि से अनंत काल तक सभी पर्यायों को हम एक साथ देखेंगे, द्रव्य कितना है, अनादि अनंत पर्यायों का समूह। सो ये जो हमने यहाँ देखे 0 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक कंटिन्यूस है ना, ये तभी तो हम इसको कहेंगे ये 12 सेंटीमीटर है, और बीच में 1-2-4 सेंटीमीटर निकाल देवे तो इसकी अखंडता भंग हो जाएगी, ख्याल है। वैसे द्रव्य में एक 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 पर्याय निश्चित है, कहाँ से, अनादि से अनंत काल तक की। तो ये पर्याय एक दूसरे से जुड़ी हुई है क्या, क्या अलग अलग है, भिन्न भिन्न बिखरी हुई है, बिल्कुल निश्चित है, उनका क्रम निश्चित है, एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते। जो जिस स्थान पर पर्याय है उसी स्थान पर वो होगी, पर्याय वहां से हिल नहीं सकती है। अपृथक वृत्ति कहाँ है, देखो इसको हम फिर कहेंगे त्रिकाल गोचर यानी अनादि से अनंत काल तक की, और उसमें संख्या कितनी दी, अनंत। ये किसकी बात चल रही है, पर्यायों की। तो अनादि अनंत जो पर्याय है, अनंत है वो, संख्या में अनंत है, ऐसे जो पर्याय है वो परस्पर अपृथक वृत्ति, परस्पर यानी एक दूसरे से, वृत्ति यानी रहना, किस तरह से रह रही है, अपृथक रूप से। प्रत्येक स्वतंत्र है परंतु प्रत्येक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनमें कंटिन्यूटी है, ख्याल है ना, ऐसे बिखरी पड़ी नहीं है कहीं पर, क्योंकि वो एक ही द्रव्य की ही तो अवस्था है, वो भिन्न है ही नहीं सर्वथा द्रव्य से। हाँ, तो उसको कहते कि परस्पर जो उनकी अपृथक वृत्ति है, या अनुवृत्ति भी कहते उसको, तो परस्पर अपृथक वृत्ति उसी को द्रव्य कहा है। क्या कहा, त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों की परस्पर अपृथक वृत्ति, यानी अनादि से अनंत काल तक जो एक एक समय के पर्याय है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपृथक है, बिल्कुल कंटिन्यूएशन में है, बिल्कुल वो फिक्स है, और जो जहाँ होनी वही होगी। देखो इससे भी वो क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होगी। द्रव्य का स्वरूप अपने ख्याल में आता है ना, कि वो तो अवस्था हर समय होती ही रहेगी द्रव्य में, वो द्रव्य की अपनी अंगभूत शक्ति से होती है। कोई दूसरा द्रव्य आवे, भगवान आवे और इसके ये पर्यायों को कुछ हिला डुला देवे, अरे इसमें हम द्रव्य तो उसी को कहते कि जो अनादि अनंत पर्यायों का समूह है, यानी उसमें अंदर वो सब है, शक्ति रूप से पड़ी है सभी पर्याय, और भगवान ने सभी पर्याय वर्तमानवत देखी, एक साथ देखी है, वही तो केवल ज्ञानी की विशेषता है, केवल ज्ञान इन सभी पर्यायों को एक साथ जानते हैं। हम वर्तमान वाली कुछ कुछ किसी द्रव्य की कुछ कुछ पर्याय जानते हैं, वो भी स्थूल रूप से जो है मोटी मोटी उसको जानते हैं, ख्याल है ना, एक सूक्ष्म ज्ञान हमारी इतनी लिमिटेड है, और उसके द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं, केवल ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम नहीं जान सकते तो और कोई नहीं जान सकता, ऐसा हमको लगता है। तो ये केवल ज्ञानी कैसा जानता है, तो ये द्रव्य की अनादि अनंत पर्याय बिल्कुल अपृथक रूप से वो रहे उसमें, द्रव्य में है वो, ऐसे पर्याय रूप से नहीं है। पर्याय रूप से तो वर्तमान की एक पर्याय है, और बाकी जो अनादि अनंत पर्याय जो है वो बिल्कुल चिपकी हुई एक दूसरे से, अपृथक है। और जिस समय जो पर्याय होने वही निकलेगी द्रव्य में से, वही होगी परस्पर यानी एक दूसरे से, और अपृथक यानी भिन्न भिन्न ऐसे नहीं है, भिन्न नहीं है, साथ साथ नहीं कह सकते। साथ साथ होगी तो एक समय में हो जाएगी सभी, अपृथक पास पास में है वो एक दूसरे से भिन्न नहीं कह सकते। अभी एक समय की जो पर्याय है दूसरे समय की पर्याय क्या उससे सर्वथा भिन्न नहीं हो, क्योंकि वो पृथक नहीं है, अपृथक है,
जुदी जुदी नहीं है, सलग है, समझ लेना। एक दूसरे से लगती हुई परस्पर अपृथक वृत्ति से है, यानी पृथक यानी भिन्न भिन्न, और अपृथक यानी जो भिन्न भिन्न नहीं है। अब वहाँ अपेक्षाएं दो लगती है, वो भिन्न भिन्न है इसलिए तो एक समय में एक आएगी, और अपृथक है इसका अर्थ बीच में कहीं गैप नहीं है, सलग है, सड़ंग गुजराती माँ के में, यानी उसमें कहीं पर भी गैप नहीं है, इतनी ध्यान रखना, इसलिए उसको अपृथक कहा गया है। और वृत्ति का अर्थ रहना, यानी अपृथक रूप से रहना, यही पर्यायों का स्वभाव है। और ये अनादि काल से अनंत काल तक की ये जो पर्यायों का जो कोई सिलसिला चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, उसी को यहाँ द्रव्य कहने में आ रहा है।
देखो इसके लिए वो शास्त्र का ही एक श्लोक उद्धृत करते, कहाँ भी है लिखा ना उन्होंने, तो ऊपर हम पढ़ेंगे 3 नंबर का श्लोक ऊपर जो है, नयोपनयैकान्तानां त्रिकालानां समुच्चय अविभ्राग्भाव संबंधो द्रव्यमेकमनेकधा। द्रव्य किसको कहना, उसके लिए ये आप्तमीमांसा का यहाँ श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है। तो कहते हैं जो नैगमादि नय और उनकी शाखा उपशाखा रूप उपनय, ये नय और उपनयों की बात हमने थोड़ी सी पहले भाग में सीखी थी। नैगम आदि नय थोड़े याद है कि नैगम आदि कौन कौन से, नैगम संग्रह नय, व्यवहार नय, रुजु सूत्र पहले, हाँ रुजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत लास्ट, तो ये नैगम आदि 7 नय और उनकी जो जितनी शाखा उपशाखाएं हुई वो सब, यानी जो अनेक नय है उनके विषयभूत त्रिकालवर्ती पर्यायों का, यानी ये पर्याय जो है वो नयों के द्वारा जानी जाती ना, उसके विषय है वो, तो ऐसे जो त्रिकालवर्ती पर्याय है उसका अभिन्न संबंध रूप समुदाय, वो संबंध हुआ है, संबंध चाहिए, स के ऊपर बिंदी लगा दो, क्या कहते हैं कि नयों के द्वारा जो विषय हो सकती है ऐसी त्रिकालवर्ती पर्याय, त्रिकाल गोचर पर्याय, तो ऐसे पर्यायों का यानी अनादि अनंत पर्यायों का अभिन्न संबंध, यह है ना अपृथक वर्ती, अभिन्न संबंध है, एक दूसरे से भिन्न नहीं किए जा सकते वे, एक पर्याय उसके नेक्स्ट पर्याय से वो जुड़ी हुई है, उससे वो भिन्न नहीं करेंगे। हम क्या कहते हैं, हम चाहते हैं ये पर्याय नहीं होना चाहिए, यहाँ ये ब्लैक ये व्हाइट यहाँ नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर चले जाओ और यहाँ ब्लैक आवे जाए नीचे, है ना, तो हम उसकी पर्याय बदलना चाहते हैं। हम क्या इच्छा करते हैं कि ये पर्याय यहाँ नहीं होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए, है ना।
जरा तो हम ऐसा विचार करते हैं कि हम समझ लीजिए कि कोई अपने आत्मा का ध्यान करने को बैठे हैं और उस समय हमें कोई ऐसे विकल्प आते हैं, शुभ भाव भी आते हैं, या हम शुभ करना चाहते हैं वहाँ पाप परिणाम आते हैं, और हम सोचते हैं कि इसको यहाँ आना नहीं चाहिए। अरे आना नहीं चाहिए ये अपने हाथ की बात है क्या, प्रत्येक पर्याय तो निश्चित है यहाँ बता रहे, और एक पर्याय के बाद दूसरी जो पर्याय वह भी निश्चित है, और हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि ये अशुभ परिणाम निकल जाए और उसके बदले में शुभ परिणाम आ जाए, या शुभ परिणाम निकल जाए और उसके बदले में शुद्ध परिणाम आ जाए। पहले वस्तु का स्वरूप समझना, कि जिस समय जो पर्याय होनी है वही होगी, ये बात बार बार यहाँ पर समझा रहे हैं, क्योंकि कोई भी पर्याय आगे पीछे करने का सामर्थ्य किसी का भी नहीं है, ना जिनेंद्र का है ना अन्य किसी का है, ख्याल में है ना? तो यहाँ तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि पर्याय जो जिस समय आनी है तो फिर हम क्या करें। अभी हम तो अपने आत्मा का अनुभव करने की सोच रहे थे और हम ध्यान कर रहे थे, ये बीच में आ रहे हैं, तो तुम्हारा स्वभाव क्या है? पर्यायों को हटा के इधर से उधर बिठाना ये तुम्हारा स्वभाव है, या जो कुछ चल रहा है उसका जानना ये तुम्हारा स्वभाव है? तो ये पर्याय आई थी बस जानो, उसमें राग द्वेष करने का सवाल ही किधर आया? ऐसा हम बराबर समझकर ये जो हम जो सीख रहे हैं उसके अंदर ये बात बराबर अपने हृदय में अंकित कर देना कि बस मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, जानन देखन स्वभावी हूँ, और जिस समय जो पर्याय आनी वो आई, बस। ख्याल में देखो, ये ऐसी जब बातें निकलती है तो सोगानी जी की बहुत याद आती है। वो तो ऐसा कहते हैं, पर्याय को मेरे तरफ देखना हो तो देखे, मैं तो बस जो हूं सो हूं, यानी पर्याय रूप में नहीं हूं, ऐसी कितनी उनकी दृढ़ मान्यता है। पर्याय को जहां जाना है जाने दो ना, मेरे तरफ आना है तो मेरे पीछे आने दो, मैं तो जो हूं सो हूं बस। इसका अर्थ क्या? पर्याय को पलटाने का जो इस जीव का जो कर्तृत्व का अहंकार है वह छूट जाना चाहिए। ये जो हम सारी बातें देख रहे हैं, हम तो कर्णानुयोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कर्णानुयोग में भी द्रव्यानुयोग यानी अनुयोग की बात है, या भी ये द्रव्य प्रमाण की बात तो चल रही है, लेकिन उसमें से भी मूल अध्यात्म में हम जाना चाहिए। और यह तो बस कांजी स्वामी जी की देन है, कहीं से भी हटकर वह अपने स्वरूप की तरफ ले जाने वाली जो उन्होंने एक मेथड बताई है वो हमें बार बार ख्याल में रखनी चाहिए।
देखो क्या कहते हैं, त्रिकालवर्ती पर्यायों का अभिन्न संबंध रूप समुदाय, उनका संबंध अभिन्न है ना, और पूरे अनादि से अनंत काल तक का उनका वो जो कुछ फिक्स जो ऑर्डर है, हर एक द्रव्य की अपनी अपनी पर्यायों की जो एक के बाद कौन सी पर्याय होगी वो प्रत्येक द्रव्य का अपने अपने में निश्चित है, और वो जो निश्चित नियत संबंध है उसका, तो उसके द्रव्य कहते हैं। तो पर्याय सभी निश्चित है, और पर्याय होगी कि नहीं द्रव्य में कि नहीं होगी, होगी, परंतु वो कौन सी चल रही है, कौन सी इसके बाद कौन सी होगी, ये अगर हम देखने जाते हैं तो विकल्प खड़े होते हैं। तो बस द्रव्य में जो कुछ होनी है वो होगी, तभी सामान्य रूप से द्रव्य को देखना है, कौन सी पर्याय है वो चल रही है उसकी चिंता नहीं करने की जरूरत। तो वहां इसको कहते सामान्य द्रव्य की दृष्टि करना है ना, क्या कौन पर्यायों की दृष्टि ने छोड़ दो, आने वाली होगी वो जो होनी है वो होनी है, उसकी दृष्टि छोड़ो है ना, क्या पर्याय तो हर समय हो ही रही है द्रव्य में, वो तो द्रव्य का उत्पाद वेद रूपत्व उसका तो लक्षण है, परिणामशीलता उसको द्रव्य का स्वभाव है। तभी द्रव्य को हम ख्याल में ले लेंगे, और कौन सी पर्याय चल रही है कौन सी लानी उसकी चिंता छोड़े, तो आने योग्य पर्याय ही आएगी कि नहीं, कि उसका टेंशन लेना पड़ेगा, तो टेंशन से मुक्त हो जाएंगे हम, ये कोई ट्रैंक्विलाइजर लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, हमें तो ऐसा होता है ना, चिंता होती है, टेंशन बढ़ता है, तो हमें दवाई लेनी पड़ती है, ये सब बीमारियों की दवाई इसमें है अपने देखो क्या कहते हैं, वह द्रव्य, पहले द्रव्य किसे कहना, तो अनादि अनंत पर्यायों का अभिन्न संबंध रूप समुदाय जो है उसको द्रव्य कहते हैं, और वह द्रव्य कथनचित यानी किसी अपेक्षा से एक रूप, और कथनचित यानी किसी अपेक्षा से अनेक रूप है। अभी संपूर्ण अनादि अनंत पर्यायों का समुदाय अभिन्न है तो उसको एक रूप से आप देखो, या पर्यायों की तरफ देखते रहो तो वो भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे, तो अनेक रूप भी दिखेगा द्रव्य। अरे ये तो कल मनुष्य जीव था अभी देव हो गया, पर्यायों की तरफ देखो तो भिन्न भिन्न भिन्नता सभी ख्याल में आएगी, और ये वही का वही द्रव्य है तो अभिन्नता ख्याल में आएगी, एक रूपता ख्याल में आएगी, तो भेद पर दृष्टि जाएगी हमारी, तो विकल्प खड़े हो जाएंगे, विकल्प यानी राग, और जो वही का वही हम दृष्टि में ले लेंगे तो निर्विकल्प यानी अभेद की अनुभूति हो जाएगी, ख्याल है ना, राग की उत्पत्ति नहीं होगी, और वही तो हमारा प्रयोजन है। क्या कहते हैं, वह द्रव्य कथनचित एक रूप और कथनचित अनेक रूप है। द्रव्य की एक पर्याय संख्यान है, इसलिए द्रव्य और प्रमाण में एकत्व अर्थात सर्वथा अभेद नहीं है। क्या कहते हैं, एक पर्याय लो लो तो वो एक संख्या है, वो एक है, तो द्रव्यों का प्रमाण हम अनंत कहेंगे तो वो उस पर लागू नहीं होगा, इसलिए वो सर्वथा अभेद भी नहीं है। द्रव्य का प्रमाण जब कहेंगे, अनेक द्रव्यों की बात वहां कर रहे हैं और एक पर्याय की अपेक्षा वहां संख्या निश्चित होगी उसकी, यहां एक ही बात कह रहे हैं कि द्रव्य और प्रमाण ये सर्वथा एकत्व भी नहीं है और सर्वथा उसमें भिन्नता भी नहीं है। कहा भी है अगले पेज पर, एयदवियम्मिजे अत्थपज्जया वयनपज्जया चावी तीदाणागदभूदा तावदियं तं हवदिदौवम्। एक गोमर्सार जीवकांड की यहाँ गाथा उद्धृत की है। क्या कहते हैं, एक द्रव्य में एयदवियम्मि, एक द्रव्य में अतीत अनागत और अपि शब्द से वर्तमान पर्याय रूप जितने अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय हैं तत्प्रमाण वह द्रव्य होता है। वही बात अलग अलग पद्धति से बता रहे हैं। पहले हमने देखा त्रिकाल गोचर यानी अनादि से अनंत काल तक की पर्यायों का जो अभिन्न संबंध रूप समुदाय है उसको द्रव्य कहते हैं। वही बात यहाँ अलग भाषा में कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो अतीत यानी भूतकाल में हो चुकी, अनागत यानी भविष्य काल में जो आने वाली है और जो वर्तमान की है, ऐसी जो अनादि से अनंत काल तक की पर्याय है, कौन सी पर्याय जितनी है उतनी, कौन कौन सी, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो अर्थ पर्याय किसको कहना और व्यंजन पर्याय किसको कहना? हाँ बोलो।
व्यंजन पर्याय
देखो, प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण छोड़कर अन्य अनंत गुण है उनकी एक एक समय की पर्याय को अर्थ पर्याय, सूक्ष्म है ना वो, एक एक समय की पर्याय उसको कहते हैं अर्थ पर्याय। तो इसमें कौन सी पर्याय बच गई, अभी सभी आ गई कि नहीं? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय कहने से सभी पर्याय इंक्लूड हो गई उसमें, और वो भी कितनी, अनादि से अनंत काल तक की, भूत वर्तमान और भविष्य काल की सभी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय ये मिलकर द्रव्य होता है, तत्प्रमाण द्रव्य होता है। यानी ये एक द्रव्य का प्रमाण बता रहे हैं। नहीं समझे? हम सभी जीवों का प्रमाण तो बाद में देखेंगे, पहले एक जीव का माप बता रहे हैं। तो द्रव्य कहाँ है, तो फैला हुआ है, तो हम द्रव्य कितना बड़ा है ऐसा कहते हैं, तो वो कितने प्रदेशी है, नहीं ये पट्टी कितनी है बाबा, एक इंच बाय 12 इंच ऐसे कुछ है ना। परंतु इसके जो अनादि अनंत पर्याय है उतना द्रव्य कहते हैं। नहीं समझे? द्रव्य का प्रमाण क्या है ये पहले बता रहे, एक द्रव्य का प्रमाण बता रहे। तो एक द्रव्य का प्रमाण कितना है? हाँ, तो ये टाइम फैक्टर लिया यहाँ, फोर्थ डायमेंशन। हम तो कहें कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, वो देखते हैं, थ्री डायमेंशन देखते हैं ना। परंतु ये अनादि काल से अनंत काल तक फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? उसकी एक एक पर्याय रूप से। तो द्रव्य कितना बड़ा है? तो अनादि अनंत काल तक है। तभी चिंता की कोई बात रही? हम कितने बड़े हैं? तो हम कहते हमारा बच्चा तो छोटा है, 2 साल का है, और हम अभी 50 साल के हो गए। बच्चा को या पोता को, तो हम क्या कहते हैं, वो तो 2 साल का है और हम 50 साल के, ख्याल है ना। तो यहाँ तो कहते कि हर द्रव्य कितना बड़ा है, अनादि से अनंत काल तक। तो कौन छोटा कौन बड़ा हो गया? सब सौरी के हो गए। तो हम जीवे, हम तो बड़े हो गए ना, पुद्गल तो क्या कुछ जानता नहीं है, वो भी अनादि अनंत है। तो प्रत्येक द्रव्य की उम्र सरखी होगी। एक क्या कहते हैं, एक द्रव्य में अतीत अनागत और अपिशब्द से वर्तमान पर्याय रूप जितने अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय है। अतीत और अनागत है कहा, होगी नहीं कहा अभी, अभी विद्यमान है, है ना, द्रव्य है ना, तो द्रव्य अखंड है, अभेद है, तो उसकी अनादि अनंत सभी पर्याय सुनिश्चित होगी, तभी तो हम है कहते हैं। या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं, शायद होगी शायद नहीं होगी, ऐसा नहीं है, है बिल्कुल है, तो उस प्रमाण द्रव्य है, तो द्रव्य है तो उसका प्रमाण निश्चित है कि नहीं, प्रत्येक द्रव्य का, तो प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना प्रमाण निश्चित है, अनादि अनंत की जो उसकी पर्याय है पूरी, सब अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय सब, तो उस प्रमाण द्रव्य है। देखो आपका ऐसा प्रश्न है, जब दो द्रव्य है तो उसकी अलग अलग होगी कि नहीं, उसका प्रमाण अलग होगा कि नहीं, तो उसका प्रमाण अनादि अनंत प्रमाण तो सेम है, बराबर। अभी उसमें जो पर्यायों का क्रम है वो हर एक द्रव्य का अपना अपना होगा। आप, हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अलग अलग हो रहा है, तो उसमें जो बाहर का फैक्टर है वो उसका डिसाइडिंग फैक्टर है क्या, ऐसा है ना? हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जो कार्य होता है वो उपादान से ही होता है, और अनंत द्रव्य है वो अपना अपना कार्य कर रहे, अनंत द्रव्यों की अपनी अपनी पर्याय उनके अपने अपने योग्यता से हो रही है। अब उसी समय सामने अन्य भी कोई द्रव्य अपना कार्य कर रहा है, तो उस कार्य में जो अनुकूल लगे हम उस पर आरोप करते हैं कि ये निमित्त था, इसके कारण यहाँ ये कार्य हुआ, ख्याल है ना। अभी हमारे सामने धवला पुस्तक है, वीरसेन आचार्य ने लिखी थी, और अभी तक हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे और अभी जानने लगे, है ना, तो हमें क्या लगता है कि इसके कारण हमारा ज्ञान बढ़ा, तो हमारे ज्ञान की अनादि अनंत पर्याय सुनिश्चित है कि नहीं है। अब इस विशिष्ट समय में इतना ज्ञान हो रहा है, उस समय यहाँ सामने पुस्तक निमित्त रूप से हाजिर है, तो ये जो पुस्तक के परमाणु है, ये जो प्रिंटिंग है, अब यह हमारे सामने इस तरह से इस रूप में विद्यमान होना, उसका अपना अपना काल निश्चित होगा कि नहीं। यहाँ जो इंक रूप से यहाँ जो परमाणु है उसके अनादि अनंत पर्याय सुनिश्चित है कि नहीं है, तो इस रूप में पुस्तक के ऊपर के प्रिंट रूप से हमारे सामने है। वीरसेन आचार्य ने तो कब के, वो 1200 वर्ष पहले वो पुस्तक लिखी, वो किस किस रूप में थी वो, और अभी इस रूप में हमारे सामने है, तो ये सब पर्याय किसने की, हमने थोड़ी की। हाँ, तो ये तो का, आपका ऐसा प्रश्न है, दो जीव है, सिद्धत्व प्राप्त करने का वो दोनों ही प्रयत्न कर रहे हैं, तो जो पहले प्राप्त करता है वो ज्यादा क्या प्रबल, पुरुषार्थी नहीं, उनका तो प्रश्न था बाहर की फैक्टर, बाहर का फैक्टर है निमित्त से कुछ होगा कि नहीं होगा, ऐसा उनका प्रश्न था। हाँ, यानी उनको, उनका ऐसा प्रश्न है अभी इनका कि वो ज्यादा पुरुषार्थी है कि नहीं, तो उन दो जीवों के अनादि काल से अनंत काल तक की अपनी अपनी पर्याय सुनिश्चित है, उसकी बात हम उस एंगल से बात कर रहे थे, तो हम पुरुषार्थ की अपेक्षा कहेंगे उसका पुरुषार्थ है कैसा, मोक्ष का पुरुषार्थ है, और जिस जो संसार में ज्यादा भटका तो उसने कौन सा पुरुषार्थ किया कि नहीं किया, कौन सा संसार में भटकने का पुरुषार्थ उसका ही हुआ। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक समय की पर्याय में 5 समवाय लगते हैं, ये स्वभाव है, पुरुषार्थ है, फिर वो भवितव्य है, वो काल लब्धि है, और निमित्त भी है, वो 5 में से एक कारण है, पर निमित्त से कुछ नहीं होता, वो तो परद्रव्य है। ये 4 कारण जो पहले 5-4 समवाय है वो तो उस द्रव्य में होते हैं, तो प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में उसका अपना पुरुषार्थ लगता है। हाँ, सब अपने आप होता है, यही तो समझना है।
सब अपने आप होता है, यह समझना,
ये समझना ही पुरुषार्थ है।
अब ये जो आपका प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूँ, आपने पूछा कि सभी जीवों का एम एक है, सिद्धपद पाने का, जो जल्दी पाएगा वो अधिक पुरुषार्थी है, जो बाद में पाएगा वो कम बाद में मतलब कम पुरुषार्थी है, ऐसा बिल्कुल है नहीं। अब जी ये जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ख्याल में आया, प्रत्येक गुणस्थान में जीवों के जो परिणाम होते हैं वो नौवे गुणस्थान के आगे सबके एक जैसे होते हैं। अनिवृत्तिकरण जो है ना, तो दसवां गुणस्थान प्राप्त करना, बारहवां गुणस्थान प्राप्त करना, इनमें जो कुछ पुरुषार्थ यानी आत्मा में स्थिरता है सबकी इक्वल है। अब तेरहवें गुणस्थान में भी अभी तो आत्मा में स्थिर होने का सवाल ही नहीं, उस जिसकी आयु अधिक होगी वो अधिक आयु के साथ तो वो तो पूर्ण अभी सर्वज्ञ तो हो ही गया ना, तो अभी काय का पुरुषार्थ बाकी है? कर्मों को हटाने का पुरुषार्थ होता है क्या? कर्मों को कोई हटा सकता है? ख्याल में आया ना, तो हम क्या समझते हैं, अरे आदिनाथ भगवान 1,00,000 पूर्व तो उनका समोचरण चला और भरत चक्रवर्ती फटाफट मुनि दिशा ली, सर्वज्ञता प्राप्त की, अब वो अधिक पुरुषार्थी और वो कम पुरुषार्थी, ऐसा बिल्कुल है नहीं। यही तो बात हम ये कर्णान योग के माध्यम से सीखने जा रहे हैं कि ये जो गुणस्थान जो है उनमें जो कुछ उनके परिणाम होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं वही देखेंगे हम। और ऐसी जो अपनी मान्यता है कि भाई जल्दी जावे वो अधिक पुरुषार्थी, आस्ते आस्ते जावे वो कम पुरुषार्थी, ये ऐसा नहीं, ये तो कर्तृत्व बुद्धि की बात आई। हाँ देखो, उपदेश की बात जुदी होती है और वस्तु स्वरूप जुदा होता है। जब उपदेश में कहेंगे कि आपको पानी छान के पीना चाहिए, तब आप कहेंगे क्यों साहब, नहीं उसमें जीवों की त्रस जीवों की हम हत्या करते हैं। अभी तो आप बोल रहे थे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, और अभी बोल रहे जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जहां जिस प्रकार से जो कथन आता है उसको समझना अपना कर्तव्य है और उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भाई चरणान योग का तो यही उपदेश होगा कि अपने आत्मा में स्थिर रहने का प्रयत्न करना, और कि उसके लिए कहेंगे कि आप उपवास आदि करना, क्यों कि वो जास्ती खाने से प्रमाद आता है, ख्याल में, कम खाने से आपको अपना उपयोग केंद्रित कर सकते हैं। इस तरह से उपवास क्यों करना, तो हम तो शारीरिक उपवास को देखना चाहते हैं, वास्तव में उपवास का अर्थ तो अलग है, जो निश्चित रूप से देखा जाए तो अपने स्वरूप में रहना, इसी को उपवास। देखो हरेक अनुयोग का विवेचन जुदा जुदा होगा। यहाँ तो हर बात कहेंगे कर्णान योग में कहेंगे कि जीव ने कर्मों का नाश किया, और द्रव्यान योग कहेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकता है। अब ये बात समझने की साहब अपने पास कला आनी चाहिए, हमें अगर हीरे का व्यापार करना है तो हीरा पारख ही अपने को होना चाहिए, पारख पारख। पारख क्या है मालूम है आपको? आप शाह है ना, शहनशाह हो, वो पारख यानी जो पारखी होता है रत्न का परखने वाला, हा? वैसा भाई अपने को तो अपने आत्मा को समझना है तो उसके कायदे कानून हमें जानना चाहिए, और इसी के लिए बार बार स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ करना।
देखिए अभी चौथे श्लोक का हमने अर्थ देखा ना, एक द्रव्य में अतीत अनागत और अपिशब्द से वर्तमान पर्याय रूप जितनी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय हैं तत् प्रमाण वह द्रव्य होता है। द्रव्य का प्रमाण बता दिया, एक एक द्रव्य का, प्रत्येक प्रमाण द्रव्य का प्रमाण अपना अपना है और उसकी अपनी अपनी वो पर्याय भी सुनिश्चित है, अभिन्न है एक दूसरे से, अपृथक रूप से वर्तती है, क्या है? यद्यपि इस प्रकार द्रव्य और प्रमाण में भेद रहा आवे, कथनचित भेद और कथनचित अभेद हमने अभी देखा इसमें, तो यहाँ ऐसा उसमें भेद रहा आवे, फिर भी द्रव्य के गुणों की प्ररूपणा के द्वारा ही द्रव्य की प्ररूपणा हो सकती है। द्रव्य की प्ररूपणा कहना है तो द्रव्य की प्ररूपणा में द्रव्य के गुणों की प्ररूपणा करेंगे तो द्रव्य की प्ररूपणा हो जाएगी, क्योंकि गुण यानी क्या है, द्रव्य के कैरेक्टर से, द्रव्य कैसा है कहने पर वो गुण के, गुणों की हम बात करते हैं कि जीव कैसा है, तो हमने देखा जीव के गुण कौन कौन से है उसकी बात करेंगे, तो गुणों की प्ररूपणा के द्वारा द्रव्य की प्ररूपणा हो सकती है, क्योंकि द्रव्य के गुणों की प्ररूपणा के बिना द्रव्य प्ररूपणा का कोई उपाय नहीं है। जीव द्रव्य है कहेंगे तो अभी जीव द्रव्य क्या है, जीव जीव होता है, अपन जीव कैसा होता है किसे कहना, तो ये अभी समय सार में बात चल रही है। व्यवहारिक जनों को समझाने के लिए पहले क्या कहते हैं, जो जानता है, जो देखता है, जो स्थिर होता है, यानी जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें चारित्र है, वही तो जीव है। तो गुणों के द्वारा हमने द्रव्य की प्ररूपणा की। जैसे पुद्गल क्या होता है, छोटा बच्चा नहीं समझेगा, या अभी जो कोई 6-7 साल का बच्चा है जिसको हमको पुद्गल समझाना है तो क्या कहेंगे, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, तो समझेंगे ना, अभी इसमें स्पर्श है, रस है, गंध वर्ण है, तो ये क्या है, तो ये पुद्गल है। तो गुणों के द्वारा ही द्रव्य की प्ररूपणा होती है, इसका अर्थ समझ में है? क्योंकि किसी भी शास्त्र में पहले विश्व क्या है, तो 6 द्रव्यों का समूह विश्व है, और द्रव्य क्या है, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और फिर वो हर एक द्रव्य के गुण गिनाएंगे। अभी जो हमने गिनाए थे कि द्रव्य 2 प्रकार के है, जीव है, अजीव है, फिर अजीव के गुण बताए, जीव के गुण बताए, फिर अजीव में भी अन्य 5 द्रव्यों की बात की। तो इस तरह से हमने द्रव्यों को कैसे पहचाना, गुणों के द्वारा पहचाना, यानी गुणों के द्वारा, गुणों के निरूपण के द्वारा द्रव्य की निरूपण कहो या प्ररूपणा होती है। कहा भी है, और कहा भी अभी ऊपर 5वां नंबर का जो श्लोक है वो, नानात्मताम अप्रजहत तत् एकात्मताम अप्रजहत च नाना। अलग उसकी चाल है, एक मिनट। नानात्मताम अप्रजहत तदेकम एकात्मताम अप्रजहत च नाना, अंगांगी भावात् तव वस्तु यत्तत् क्रमेण वाग्वाच्य मनंत रूपम। क्या कहते हैं, अपने गुणों और पर्यायों की अपेक्षा नाना स्वरूपता को न छोड़ता हुआ। द्रव्य कैसा है, तो अभी अभी हमने देखा था कि त्रिकाल गोचर सभी समस्त पर्याय हैं, तो पर्याय वही की वैसी की वैसी की वैसी चलेगी अनंत काल तक, तो उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होगी ना, नानात्मक यानी अनेकपना, अलग अलग विविधता। तो गुण भी कैसे है, अनेक प्रकार के है, अनंत गुण, तो तभी कहेंगे कि एक गुण से दूसरा गुण कुछ डिफरेंट है, तभी तो हम उसको गिनेंगे। एक ही गुण के द्वारा द्रव्य नहीं बना है, उसमें अनंत गुण है, अनंत तभी कहेंगे जब कोई अनंतता है उसमें, प्रत्येक कोई, ये ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चारित्र अलग है, तभी तो हमने उसके 3 नाम दिए। अस्तित्व गुण अलग है, उसका स्वरूप अलग है, वस्तुत्व गुण का स्वरूप अलग है, द्रव्यत्व अलग है, प्रमेयत्व अलग है, उसका अपनी अपनी विशेषता है, तभी तो हमने उसको अलग अलग नाम दिया ना। तो ऐसे अनंत गुण है, यानी उसमें विविधता है। तो ये जो नानापना है, तो गुणों की अपेक्षा और पर्यायों की अपेक्षा द्रव्यों में ये नानापना होने पर भी, पहले नानापना सिद्ध करते, और नानापना सिद्ध होने पर भी, यानी नाना स्वरूपता को न छोड़ता हुआ, न छोड़ता यानी उसके धारण करते रहने पर भी न छोड़ता हुआ, वह द्रव्य एक है। गुण इतने अनंत है, जीव द्रव्य में इतने अनंत है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, सब सब कुछ है, अस्तित्व वस्तु सब कुछ है, फिर भी द्रव्य हम देखने जाए तो एक है। उसकी पर्यायों की तरफ देखा तो अनादि अनादि, वो तो निगोद में था, एक इंद्रिय में था, द्विंद्रिय में था, पंचेंद्रिय हुआ, कभी मनुष्य हुआ, देव हुआ, नारकी हुआ, तो फिर कभी वो सिद्ध में पहुंच गया। तो इतने पर्यायों के नाना रूपता को न छोड़ता हुआ वह द्रव्य एक है, वही का वही द्रव्य है ना, निगोद अवस्था से लेकर सिद्ध अवस्था तक वही का वही द्रव्य है। परंतु पर्यायों की तरफ देखें तो कितना नानापना है उसमें, अनेकपना है। वैसे द्रव्य एक है, और गुणों की तरफ देखो तो ये ज्ञान गुण है, दर्शन है, चारित्र है, वीर्य है, उसमें भी नानापना है। तो नाना स्वरूपता को न छोड़ता हुआ द्रव्य एक है। और अभी उल्टी तरह से समझाएंगे, अन्वय रूप से एक पने को नहीं छोड़ता हुआ, अन्वय रूप में वही का वही पना, उसको कहेंगे अन्वय, यानी द्रव्य वही का वही रहते हुए भी, यानी एक ही रहते हुए भी, वह अपने गुणों और पर्यायों की अपेक्षा नाना है। यानी द्रव्य एक, द्रव्य को ही द्रव्य एक है और द्रव्य अनेक कह रहे, यानी गुणों और पर्यायों की अपेक्षा अनेकता होने पर भी द्रव्य देखो तो एक है, एक अखंड अभेद है, और द्रव्य एक वही का वही होते हुए भी गुणों और पर्यायों की अपेक्षा से द्रव्य को ही देखो तो द्रव्य ही अनेक है। जो एक द्रव्य है वही अनेक द्रव्य है, यानी गुण अनेक है और द्रव्य एक है, ऐसा नहीं यहां भेद करे। जो द्रव्य गुणों की अपेक्षा नाना स्वरूप दिख रहा था वही द्रव्य एक है, और जो द्रव्य वही का वही है, वही गुणों और पर्यायों की तरफ से उसको देखो, उसी द्रव्य को ही देखो, एक ही द्रव्य को देखो, तो वो अनेक स्वरूप दिख रहा है ना। अभी वही, अभी महावीर भगवान का जो सिद्ध भगवान है, अभी विराजमान है, उसी द्रव्य को, एक ही है ना वो द्रव्य, अनादि अनंत एक ही है। अभी उनको कभी हम आदिनाथ भगवान के समोसरण में देखते हैं तो कौन दिख रहा है? वही का वही द्रव्य, एक ही मारीच दिख रहा है। आज आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है ना, मालूम है आपको? नहीं मालूम? मालूम है, अरविंद भाई को पता है। तो वो मारीच दिख रहा है, और वही श्रेयांसनाथ भगवान के काल में हमने देखा उसी जीव को, आपको मिला कहीं? श्रेयांसनाथ भगवान के काल में वो जीव कौन था? हाँ, त्रिपुरुष नारायण था, वो त्रिपुरुष नारायण था। वही वो भी घूमते 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 फिर हमने देखा 10 भाव पहले, तो सिंह की पर्याय में दिखा। उसके बाद देव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य कितने सारे भाव कर दिए उसने, और फिर वो महावीर भगवान तीर्थंकर के रूप में दिखे, और अभी आज हम देखेंगे तो सिद्ध के रूप में देखे। तो पर्यायों के ये नाना रूप था, द्रव्य वही का वही, यानी हाँ, अन्वय रूप से वही का वही द्रव्य है ना। तो अनेक स्वरूप होते, नाना स्वरूप को न छोड़ते हुए द्रव्य एक है, और अन्वय रूप से वही का वही द्रव्य होने पर भी गुणों और पर्यायों की अपेक्षा उसे ही देखेंगे तो अनेक रूप दिख रहा है। ये तो अलौकिक स्वरूप है द्रव्य का, है ना? तो क्या कहते हैं, देखो इसको फिर पढ़ेंगे हम। अपने गुणों और पर्यायों की अपेक्षा नाना स्वरूपता को न छोड़ता हुआ वह द्रव्य एक है, और अन्वय रूप से एक पने को नहीं छोड़ता हुआ वह अपने गुणों और पर्यायों की अपेक्षा नाना है। जो एक है वही अपेक्षा बदलते ही नाना हो गया। द्रव्य एक और गुण नाना है ऐसा नया नहीं कहना चाहते, द्रव्य एक है और गुणों की अपेक्षा द्रव्य ही अनेक है, ख्याल है ना? एक ही चीज पर कोई भी नए लगता है तो एक ही, इस पर एक नए लगा और दूसरे पर दूसरा नए लगा, ऐसा नहीं होता है। जो एक है वही अनेक है ये बता रहे हैं, अपेक्षा यहां बदल दी, ख्याल है? इस प्रकार अनंत रूप जो वस्तु है वही, एक ही वस्तु को अनंत रूप कह दिया, उसके रूप अनंत है। कैसे? गुणों की अपेक्षा अनंत रूप है, पर्यायों की अपेक्षा भी अनंत रूप है। हे जिन, आपके मत में क्रमशः अंगांगी भाव से, यानी अंग अंगी, अंग यानी जैसे अवयव और अवयवी, अंग यानी उसके पोर्शंस है ना, अलग अलग पार्ट्स, और वो सभी मिलकर एक जो वस्तु होती है उसको अंगी कहेंगे। अंग को धारण करने वाला अंगी, जैसे धर्म और धर्मी, गुणों को धर्म कहेंगे, या गुण और गुणी, वैसे अंग और अंगी। तो गुण और द्रव्य के रूप में अंग अंगी भाव से, ये कोई शब्द नया आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं कि ये जो अनंत रूप जो वस्तु है ना, कैसे अनंत रूपता को प्राप्त है, उसमें अनंत गुण है, अनादि अनंत अनंत पर्याय है, तो ऐसे अनंत रूप वस्तु है वही, यानी वही वस्तु आपके मत में, आपके मत में यानी जिनेन्द्र भगवान के मत में, यानी वो जिनेन्द्र है इसलिए उनका मत सच्चा ऐसा नहीं, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखो तो जिनेन्द्र भगवान ने उसको कैसे बताई है, तो क्रमशः अंग अंगी भाव से वचनों द्वारा कही जाती है। तो क्रमशः क्यों कही, एक साथ क्यों नहीं कही? क्योंकि वचन ही क्रमशः कहे जाते हैं। वचन की तो इतनी वो उसकी दुर्बलता है कि वो एक साथ सब वस्तु कैसे कहेंगे। हमारे 2 बच्चे तो भी हम एक साथ उन दोनों का नाम नहीं ले सकते, किसी को पहला बताना पड़ेगा, किसी का नाम दूसरा लेना पड़ेगा, है ना? तो कहते हैं कि ये अंग और अंगी, अंग अंगी भाव, यानी वो गुण और वो ये गुणी, ऐसे द्रव्य में ही भेद करके हम उसके गुणों के द्वारा उसका कथन करेंगे। तो वो क्रमशः वचनों द्वारा कह सकते हैं, यानी उसमें से कुछ उसका वर्णन कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि हे जिन, यानी जिनेन्द्र के मत में क्या हो रहा है, क्रमशः अंग अंगी भाव से वचनों द्वारा कही जाती है। कौन कही जाती है? वस्तु, वस्तु यानी द्रव्य, द्रव्य अनंत स्वरूप होने पर भी क्रमशः ये गुण और ये गुणी है इस रूप से वचनों द्वारा भी उसका कुछ वर्णन तो हो सकता है, तो क्रमशः उसका कुछ वर्णन कर सकते हैं। तो आचार्यों ने तो जो प्रयोजनभूत, जो हमें जानना अत्यंत आवश्यक है, ऐसे कुछ गुणों के द्वारा द्रव्य को बताया है, क्योंकि जो अनंत है उसको अनंत काल में भी हम कह नहीं सकते है ना। तो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, जो कुछ मेन मेन जो असाधारण धर्म है उसको बताकर हमको द्रव्य की अनेकता भी बताई है, और द्रव्य के चिन्ह बताकर द्रव्य को पहचानने में भी हमें सुलभता हो जावे, इस तरह से यहाँ अध्यात्म शास्त्र में उसका वर्णन है। कितना उपकार है, नहीं तो हम तो बस ये मनुष्य मैं और ये पैसा कमाते हूँ, ये तो मेरा क्या हुआ, हाँ फर्ज, यानी जन्मता है बच्चा, दो ढाई साल में स्कूल में एडमिट कर देते हैं हम, वो सीख कर तैयार होता है तब 25-30 साल हो जाते हैं, और फिर पैसा कमाने में उर्वरित आयु बीत जाती है। मैं कौन हूँ ये सोचने के लिए भी ये जीव को फुर्सत ही नहीं ना, क्या करे। पहले तो हम खुद पढ़े, हम पढ़कर अभी बाहर नहीं निकलते तो शादी की, बच्चे हुए, फिर उनकी पढ़ाई में इतने जुड़ गए, जितने पढ़ाई पर हमने अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया ना, इतने बच्चे के वो बिल्कुल ऐसा छड़ी लेके वो कि तुझे इतने मार्क्स लाना ही है, जो हम नहीं कर सके वो बच्चों को करना ही चाहिए, क्यों, विशेष साइकिल हो गया आजकल का दुष्ट चक्र। हाँ, अरविंद भाई कहते हैं वो पैसा कमाने के लिए जो पढ़ाई आवश्यक है, लौकिक की पढ़ाई, वो भी पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं करता है, आगे कुछ अच्छा कमा सके, क्योंकि कौन पढ़ना, डॉक्टर होना कि इंजीनियर, नहीं नहीं आज सीए अच्छा है, सीए होना अच्छा है, उसमें ज़्यादा कमानी है, ऐसे ना, तो उसके लिए तो 25-30 साल गंवाएं, परंतु हमें धर्म सीखना है, अपना ही स्वरूप पहचानना है, उसमें से दूसरे को कोई फायदा नहीं है, हमारा ही अनंत काल सुख में जाने वाला है, तो उसके लिए एक घंटा भी देने के लिए तैयार नहीं। वो तो कहेंगे हम, ये तो बुढ़ापे में करने की बात है, अब क्या करने की क्या जरूरत है, कोई ऐसा नहीं कहता है कि अभी पढ़ाई हो चुकी, अभी 25 साल हो गए, अभी तो मैं कमाऊंगा और 60 साल में शादी करूंगा, ऐसा तो कोई नहीं कहता है, यानी वो कमाई करते करते समय शादी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो भी चलते रहते हैं, उनका भी साइड बाय साइड वो भी चलता है, परंतु साइड बाय साइड भी यहाँ कोई धर्म की बात नहीं सुनना चाहता, क्यों।
अरविंद भाई ये कहना चाहते हैं कि बाकी लौकिक पढ़ाई के लिए जिसके कारण इसे पैसा मिलता है ये बात बिल्कुल सही नहीं है।
हाँ।
पढ़ाई के कारण से पैसा मिलता है ऐसा नहीं, फिर भी वो आयु के 25 साल गुजारे और धर्म सीखने तो एक घंटे में सिखाओ भाई, आपने वो फुर्सत नहीं है, एक घंटे में पूरा सीखना चाहते हैं, ये बात वो कह रहे थे। चलो ठीक है।
देखो तो यहाँ हमने ये 5वां श्लोक पढ़ दिया, देखो अभी आगे शंका, शंका नहीं उसके ऊपर 5वें श्लोक के नीचे, हाँ बीच में 4 लाइन है। अतः द्रव्य के गुण रूप प्रमाण के प्ररूपण कर देने पर द्रव्य का कथन हो ही जाता है। पहले पर्याय रूप कथन के द्वारा बता दिया द्रव्य कितने हैं, उसकी द्रव्य का प्रमाण बताया, अनादि से अनंत काल तक के जो पर्याय है उनका जो अभिन्न संबंध रूप समुदाय है, वो द्रव्य का प्रमाण बताया। अब गुणों के द्वारा भी द्रव्य का प्रमाण बताते हैं कि एक द्रव्य में जितने गुण है वो द्रव्य का ही प्रमाण है, गुणों का कथन करो तो द्रव्य का ही कथन हो जाता है उसमें, है ना। तो कहते हैं कि गुण रूप प्रमाण के प्ररूपण कर देने पर द्रव्य का कथन हो ही जाता है। तो हमने बहुत बहुत बार पहले देखा है कि एक द्रव्य में गुण कितने हैं, तो अनंत, कितने अनंत है, तो जीव अनंत, उससे अनंतानंत पुद्गल, उससे अनंतानंत गुणा 3 काल के समय, उससे अनंतानंत गुणा आकाश के प्रदेश, और उससे अनंतानंत गुणा एक द्रव्य में गुण। तो ये द्रव्य का प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ, एक द्रव्य का प्रमाण हमने गुणों के द्वारा बताया, पहले तो 3 काल की पर्याय द्वारा बताया, तो पर्याय ज्यादा के गुण ज्यादा, हाँ क्यों, हाँ देखो 3 काल के पर्याय कितने हैं, तो जितने काल के समय हैं उतने प्रत्येक द्रव्य की पर्याय, और उससे अनंत गुणा आकाश के प्रदेश है, और उससे अनंत गुणा एक द्रव्य में गुण है, ख्याल है ना। और अभी हम खाली अनंत अनंत ही कह रहे हैं, वो अनंत की अनंतता अभी ख्याल में आ जाएगी जब हम आगे पढ़ेंगे तब। अरे इसमें तो और अपना आनंद बढ़ना चाहिए। अनंत का जब ख्याल में आएगा स्वरूप, अरे इतने अनंत गुण मेरे में है, अपने बैंक में कितना है वो खाता देखते तो कैसा आनंद होता है ना। तो ये इतने अनंत है रे मेरे में।
खाते में कितने पैसे उससे आनंद नहीं होता है, वो सेफ डिपॉजिट में कितने उससे आनंद जस्ती होता है।
यानी हमने अभी तक अपना क्या है वो समझा ही नहीं है। देखा अगर आपका बैंक बैलेंस या आपकी जो कुछ रोकड़ है, जमीन जुमला है, वो देखकर मैं यहाँ खुशी मनाऊँ तो आप क्या कहेंगे, ये पागल है, दूसरे की संपत्ति में आनंद मानते हैं। और यहाँ तो अपनी संपत्ति का पता ही नहीं हमें, अपने में कितने गुण है, अपना क्या है वो पता ही नहीं है। और जो परद्रव्य का कुछ पुद्गल का संचय हो गया तो उसी में हम आनंद मानते हैं और उसी में अपने को बड़प्पन मानते हैं। देखो कोई अभी दो भाई समझो कमा रहे और एक की कमाई ज्यादा है दूसरे की कम है, तो क्या करेगा वो, अपने को हीन मानता है ना। ये तो लौकिक में अपनी बात है, वो ज्यादा पुरुषार्थी है, उसको भी पुरुषार्थ में डाल देते हूँ। देखो क्या कहते हैं, यहाँ गुण के प्रमाण के द्वारा द्रव्य का प्रमाण का यानी कथन हो जाता है, एक बात हो गई। इस प्रकार सूत्र में द्रव्य और प्रमाण की प्ररूपणा है ही, अतएव द्वंद्व समास भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। यह तो द्वंद्व समास के अभी वो शंका समाधान चल रहा है, यानी यहाँ द्रव्य का भी प्रमाण बता रहे, वो प्रमाण की भी बात चल रही है। इस प्रकार तत्पुरुष कर्मधारय और द्वंद्व समास को छोड़कर शेष समासों की यहाँ संभावना नहीं है, यानी ये तीनों ही समास यहाँ पॉसिबल है ऐसा कहते हैं। इसके अलावा अन्य कोई समास यहाँ नहीं होगा, तो अन्य कोई समास नहीं होगा कहेंगे तो शंकाकार पूछेगी अन्य भी कोई समास होते हैं। क्यों, तो शंकाकार पूछते हैं वे संपूर्ण समास कितने हैं, तो उसका समाधान वे समास छह ही है, कहाँ भी है ऊपर बहुव्रीहव्ययी भावौ द्वंद्वस्तत्पुरुषो द्विगो कर्मधारये इत्येते समासा षट् प्रकीर्तिता। ये व्याकरण का नियम बताया, क्या कहते हैं इसका अर्थ नीचे दिया। देखो बहुव्रीही अव्ययी भाव द्वंद्व तत्पुरुष द्विगु और कर्मधारय, इस प्रकार ये छह समास कहे गए हैं। इसका अर्थ आगे बताते हैं। देखो यहाँ शंका कहते, फिर यहाँ द्रव्य प्रमाण इस पद में उपर्युक्त तीन समासों को छोड़कर दूसरे समासों की संभावना क्यों नहीं है। तत्पुरुष कर्मधारय और द्वंद्व समास तो उन्होंने समझा दिए, अन्य तीन जो है बहुव्रीही है, अव्यय भाव है और द्विगु है, वो यहाँ क्यों नहीं होते हैं, ऐसा इसका शंकाकार का पूछना है। समाधान, क्योंकि यहाँ पर उनका अर्थ घटित नहीं होता इसलिए अन्य समासों का ग्रहण नहीं किया गया। शंका, उन छहों समासों का क्या अर्थ है, यानी आपने इतने फॉरेन नाम सब बता दिए तो उनका अर्थ भी बता दीजिए कहते हैं। उसका ऊपर 7 नंबर का श्लोक, बहिरर्थो ब्रह्मव्रीहि परम तत्पुरुषस्य च पूर्वमव्ययी भावस्य द्वंद्वस्य तु पदे पदे। क्या कहते हैं, अन्य अर्थ प्रधान बहुव्रीही समास है, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पदार्थ प्रधान है और द्वंद्व समास की प्रत्येक पद में प्रधानता रहती है। क्या कहते हैं, दो पद है ना शब्द, यहाँ द्रव्य और प्रमाण ये दो शब्द हैं, जैसे पहले भी हमने देखा है कि देवदत्त से कंबल, तो दो पद है, तो उसमें कौन से पद की प्रधानता है उस पर ये समासों के यहाँ वर्णन किया है। ये व्याकरण का विषय, इसमें समझे तो ठीक, नहीं समझे तो कोई क्योंकि आगे चलकर उसके आगे कुछ नहीं, उसका बस इतना ही प्रश्नोत्तर है इसका, ख्याल है ना। तो क्या कहते हैं, अन्य अर्थ प्रधान वह बहुव्रीही समास है, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समास है, और हाँ उसके बाद वाला अव्ययी भाव समास में पूर्व पदार्थ प्रधान है, यानी पहला पद उसमें प्रधान होता है, और द्वंद्व समास की प्रत्येक पद में प्रधानता रहती है। द्वंद्व समास में दोनों पद समान रहते हैं। संख्या पूर्वक तत्पुरुष को द्विगु समास कहते हैं, जैसे पंचनद इत्यादि। यानी संख्या पहले बताई, संख्या पूर्वक तत्पुरुष, संख्या पूर्वक तत्पुरुष यानी क्या, तत्पुरुष हमने हमने क्या देखा था, द्रव्य की संख्या, वो तत्पुरुष है हमने लिखा ना, द्रव्य की संख्या। जैसे हमने कहा यहाँ लिखा है उत्तर, जैसे पंचनद, नद यानी बड़ी नदी होती है ना, उसको नद कहते हैं, महानद कहते हैं उसको, या नद कहते हैं। तो नदियों की संख्या बतानी है, तो पांच महान नदियां बतानी है, पंचनद, नदियों की संख्या बताई कितनी है, पांच है। तो ये संख्या पूर्वक, संख्या पहले बताई और बाद में वो नद शब्द लिखा, पंचनदी लिखा है ना, आपको मालूम है ऐसे कोई, शट आवश्यक बता दिया। और रोज पहले उठते किसका स्मरण करते, पंच परमेष्ठी। कोई कहेगा हम उसको याद नहीं करते, हम पंच पापों को याद करते हैं। तो ये पांच संख्या, संख्या पूर्वक उसको बता देना, उसको कहते हैं ये द्विगु समास। हाँ, जहां पर दो पदार्थों का एक आधार दिखाया जाता है ऐसे तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं। ये उसकी अनेक डिटेल्स बताई है व्याकरण के। अब आगे की शंका हम देखते हैं। दो पद है ना, दो पदार्थ है ना, भी एक द्रव्य हुआ और एक प्रमाण हुआ, द्रव्य प्रमाण हमने कहे उसका। यहां पर शंकाकार कहता है कि संख्या एक रूप ही है, क्योंकि एक को छोड़कर दो अधिक संख्याएं नहीं पाई जाती है, और वह एक रूप संख्या संपूर्ण पदार्थों में रहती है ऐसा जाना जाता है। यदि ऐसा न माना जाए तो उन संपूर्ण पदार्थों का अस्तित्व ही नहीं बन सकता है। इसलिए यहां पर उस संख्या की प्ररूपणा से क्या प्रयोजन है, शंका करके ऐसी कुछ शंका है कि शंका तो ये संख्या तो एक ही रहती है, एक ही ये संख्या है, तो एक को छोड़कर दो वगैरह कोई संख्या ही नहीं होती है, ऐसे इसका कहना है शंकाकार का। और वो एक रूप संख्या सभी पदार्थों में रहती है, ऐसे वो कुछ अटपटी बातें करते हैं, अभी उसका समाधान देखेंगे। समाधान, आगे उपर्युक्त शंका का परिहार करते हैं। संपूर्ण पदार्थों के नियम से एक ही संख्या होती है, यदि ऐसा मान लिया जाए तो वे संपूर्ण पदार्थ एक रूप संख्या से अभिन्न हो जाते हैं, इसलिए उन सबको एकत्व का प्रसंग आ जाता है। शंकाकार ने पूछा, बताया था कि एक ही संख्या है, दो तीन चार पाँच दस आदि कोई संख्या होती ही नहीं है, और सब पदार्थ मिलकर एक, तो हम कहेंगे जीव एक है, तो जीव एक है तो सब मिलकर एक हो गया, यानी एक ही हो गया ना। तो क्या कहते हैं कि संपूर्ण पदार्थ एक रूप संख्या से अभिन्न हो जाते हैं, इसलिए उन सबको एकत्व का प्रसंग आ जाता है। यानी जो अनंत जीवों के अस्तित्व भिन्न भिन्न है, वे सब एक हो जाने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि उसने एक ही संख्या मानी है, बराबर ना। और ऐसा मान लेने पर, एक पदार्थ का ज्ञान होने पर संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान, एक पदार्थ के विनाश होने पर संपूर्ण पदार्थों का विनाश, और एक पदार्थ की उत्पत्ति होने पर संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति होने लगेगी। सब मिलकर एक माना ना, तो एक का जो होगा वो सब में मानना पड़ेगा, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता है, इसलिए पदार्थों में भेद मान लेना चाहिए। हम कहेंगे हमारे कुटुंब में 15 सदस्य है, हम सब मिलकर एक है कहेंगे, तो एक अगर मानेंगे तो उसमें कोई बुजुर्ग है, उनकी देहांत, उनका देहांत हो जाए तो सबका होना चाहिए एक साथ, ख्याल है ना। और कोई नया बालक जन्मा तो हम सब जन्मे सबकी उत्पत्ति हो जावे, ऐसा प्रसंग होगा। इस प्रकार यानी उसमें पदार्थों में भेद मान लेना चाहिए। इस प्रकार पदार्थों में भेद के सिद्ध हो जाने पर उनमें रहने वाली संख्या में भेद सिद्ध हो ही जाता है। यानी सब मिलकर एक नहीं कह सकते, हम 15 सदस्य तो 15 संख्या हमको माननी पड़ेगी, जितने हैं उतने उसका अस्तित्व अलग अलग भिन्न भिन्न मानना ही पड़ेगा ना, तो संख्या भी वैसी अलग अलग होगी। क्योंकि अनेक पदार्थों में रहने वाली संख्याओं में एकत्व अर्थात अभेद मानने में विरोध आता है। शंका, एक यह संख्या ही अनेक रूप हो जाओ परंतु उससे भिन्न संख्या नहीं पाई जाती है, यह अच्छा है। वो कोई आगे का गणित ही नहीं समझना चाहता तो कहते एक ही यह संख्या है, वो एक ही अनेक रूप हो जाता है, दो तीन चार अभी कुछ है ही नहीं है, तो उसका समाधान ऐसा नहीं है। क्योंकि एक संख्या को बहुत रूप मानने में विरोध आता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष जानते हैं ये तो भिन्न भिन्न पदार्थ है, तो वो सब मिलकर एक ही कैसे हो सकते हैं, और एक नहीं अनेक रूप लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं हम। हेलो, शंका, एक यह संख्या एकत्व के प्रति समान होने से एक रूप है और द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव के भेद से नाना रूप है, इसलिए एक संख्या में बहुत्व विरोध को प्राप्त नहीं होता है। क्या कहते हैं? उसने कहा ना एक एक जो संख्या है वही अनेक रूप धारण करती, कैसे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वो अनेक रूप हो जाती है, ऐसा कहना है इसका शंकाकार का। उसके लिए आचार्य भी उसी को फिर शंका पूछते हैं, शंकाकार को ही शंका पूछते हैं कि यदि ऐसा है तो एक संख्या से कथनचित भिन्न होने के कारण दो आदि संख्याओं का उससे भेद क्यों नहीं मान लेते। यहाँ कहते हैं कि एक संख्या में आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद मानते हो तो एक से दो संख्या भिन्न ऐसा क्यों नहीं मानते, वैसा तो भेद स्वीकार करो। तो शंकाकार कहता है एक संख्या से दो आदि संख्याओं का भेद कैसे है। उसका उत्तर, द्रव्य क्षेत्र आदि भेदों की अपेक्षा से दो आदि संख्याओं का भेद है और इसीलिए संख्याओं में दो आदि रूपता बन जाती है, क्योंकि एक पने की अपेक्षा दोनों में समानता देखी जाती है। यानी एक जैसे है तो उतनी तो समानता होगी, परंतु हर एक का अपना अपना अस्तित्व भिन्न है ना, तो दो आदि संख्याएं बनेगी उसमें, यानी सब मिलकर एक ही नहीं होगा, दो तीन चार आदि संख्याएं भी अनंत तक संख्याएं बनेंगी। यहाँ क्या कहते हैं नीचे उसको समझाए, द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से एक और नाना इन दोनों में एकत्व है और पर्यायार्थिक नय की विवक्षा होने पर विवक्षित एक संख्या से शेष एक संख्याएं भिन्न है, इसलिए उनमें नानात्व है। हर एक द्रव्य एक 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 है ना, तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा एक और नाना इन दोनों में एकत्व है, किसी अपेक्षा से उसमें एकत्व कह सकते हम, समानता कह सकते हैं, परंतु पर्यायार्थिक नय की विवक्षा लेने पर विवक्षित एक संख्या से शेष एक संख्याएं भिन्न है। यानी विवक्षित एक संख्या, यानी आपने कहा मैं एक हूँ, आपने कहा मैं एक हूँ, आपने कहा मैं एक हूँ, तो विवक्षित एक की अपेक्षा ये जो दूसरे एक एक है वो भिन्न है। विवक्षित यानी पर्टिकुलर एक की अपेक्षा से अन्य जो एक संख्याएं है वो भिन्न है, इसलिए उनमें नानात्व है। तथा नैगम नय की विवक्षा होने पर द्वित्व आदि भाव बन जाता है। इस प्रकार संख्या के कथनचित एक रूप और कथनचित नाना रूप सिद्ध हो जाने पर उनमें से यहाँ प्रकृत में तो नैगम नय की विवक्षा से संख्या भेद ही ग्रहण करना चाहिए। यानी यहाँ संख्या भेद का ग्रहण कर लिया है, सब मिलकर एक ऐसा यहाँ नहीं लिया है। द्रव्यार्थिक नय की यानी द्रव्य की अपेक्षा से हम देखे ना द्रव्यार्थिक नय, तो द्रव्यार्थिक नय में हम कहते हैं एक वस्तु है।
द्रव्यार्थिक नय यानी सिर्फ हम द्रव्य को देखेंगे, पर्याय को छोड़
उसमें बताएं।
जब आपको स्वयं को देखना है द्रव्यार्थी की अपेक्षा से, तो द्रव्यार्थी नए कहने से वो आप द्रव्य त्रिकाली द्रव्य को देख रहे हैं, तो उसमें गुण पर्याय गौण है, हा? तो आप एक हो, आपके बाजू में वो एक है, ये एक है, सभी एक एक है, तो सभी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा एक है, ये सब में समानता है। लेकिन किसी एक विवक्षा से हम एक को पर्टिकुलरली देखते हैं, यहाँ क्या बताया देखो कि पर विवक्षित संख्या से शेष संख्याएं भिन्न है, यानी आप एक है तो उनकी अपेक्षा से ये सारे भिन्न है, ये बात हो गई ना। आपकी अकेले की बात करेंगे तो आप एक हो और ये भी एक है, ये भी एक है, लेकिन आपकी अपेक्षा से ये सारे भिन्न है।
अब ये द्रव्य प्रमाण की बात की, द्रव्य प्रमाण अनुगम एक शब्द है ना, तो अनुगम की बात करेंगे। यहाँ वस्तु के अनुरूप ज्ञान को अनुगम कहते हैं, अथवा केवली और शुद्ध केवलियों के द्वारा परंपरा से आए हुए अनुरूप ज्ञान को अनुगम कहते हैं। केवल ज्ञानियों ने प्रत्यक्ष वस्तु को जाना है, शुद्ध केवलियों ने भी, वो सभी 12 अंगों का ज्ञान है ना उनको, तो उन्होंने संपूर्ण वस्तु स्वरूप जान लिया है और उन्होंने जो बताया है जिसको हम आगम कहते हैं, तो परंपरा से आए हुए अनुरूप ज्ञान को अनुगम कहते हैं। उसके अनुरूप जो ज्ञान है, इस विश्व में 6 द्रव्य है, ये हमने कैसे जाना, तो केवली से जो परंपरा से ज्ञान चला आया है उसके अनुरूप हमारा ज्ञान है, तो ये हम उसको अनुगम कहेंगे। द्रव्यगत प्रमाण के अथवा द्रव्य और प्रमाण के अनुगम को द्रव्य प्रमाणानुगम कहते हैं। द्रव्यगत प्रमाण यानी द्रव्यों का जो प्रमाण है, अभी हमने उसका समास देखा था कैसे तैयार हुआ, यानी द्रव्य के प्रमाण का जो ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, जैसा केवली ने बताया है, परंपरा से जो चल रहा है, केवलियों ने जो उपदेश दिया था उसके बाद जो 12 अंगों की रचना हुई थी, और आचार्यों की परंपरा से जो ज्ञान अभी तक हमें प्राप्त हुआ है, तो उसको हम अनुगम कहते हैं। तो द्रव्य का जो प्रमाण का जो अनुरूप ज्ञान है, जो भगवान ने बताया है, उस अनुरूप हमारा जो ज्ञान है उसको कहेंगे अनुगम, है ना। तो इसलिए यह शब्द क्या आया, द्रव्य प्रमाणानुगम। उससे नीचे से तीसरी ऋण, उससे अर्थात द्रव्य प्रमाणानुगम की अपेक्षा, इस प्रकार द्रव्य प्रमाणानुगम पद के साथ तृतीय सूत्र में जो तृतीय विभक्ति जोड़ी है वह निमित्त रूप अर्थ में जानना चाहिए। तृतीय विभक्ति ने द्रव्य प्रमाणानुगम की अपेक्षा या के द्वारा, ऐसा जो आता है ना, द्रव्य प्रमाणानुगमेण तृतीय विभक्ति लगाई पहले सूत्र में, पहले पृष्ठ पर देखना, देखो प्राकृत में क्या लिखा है, दव्य प्रमाणानुगमेण तृतीय विभक्ति लगाई ना, यानी उसका हिंदी करते हुए की अपेक्षा लगाया, यानी द्रव्य प्रमाणानुगम की अपेक्षा से। डायरेक्ट कहना है कि द्रव्य प्रमाणानुगम से, ऐसा भी कह सकते हैं, से लगाते हैं तो तृतीय विभक्ति हो गई। अब उसके आगे का शब्द क्या था, द्रव्य प्रमाणानुगमेन दुविहो निर्देशो, निर्देश दो प्रकार का है, ऐसा शब्द है ना, तो निर्देश शब्द आया। द्रव्य प्रमाणानुगम से निर्देश दो प्रकार का है, निर्देश का भी अर्थ करेंगे। ये पहले बातें सब हुई है हमारी पहले भाग में, निर्देश किसको कहना क्या ये सब। हाँ, निर्देश दो प्रकार का है, जिस प्रकार प्रकार के कथन करने से, या फिर दोबारा उसका अर्थ देते हैं, निर्देश का अर्थ भी बताते हैं, जिस प्रकार के कथन करने से श्रोताओं को पदार्थ के विषय में निश्चय होता है, उस प्रकार के कथन करने को निर्देश कहते हैं। कोई भी कथन को निर्देश नहीं कहते, कि जिस कथन के द्वारा श्रोताओं को पदार्थ का निश्चित ज्ञान हो जाता है, लिखा है ना, पदार्थ के विषय में निश्चय होता है, निश्चय होता है ने सही ज्ञान हो जाता है, जिस कथन के द्वारा विशिष्ट पदार्थों का, मुझे कोई पदार्थ बताना है तो मैं ऐसा कथन करूं कि उसके उस कथन के द्वारा श्रोताओं को उस पदार्थ संबंधी निश्चित ज्ञान हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, उस कथन को निर्देश कहते हैं। बाकी इसकी बात हम कल देखेंगे। जावाणी